हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अंबिका के मन में शक बैठ गया था। अपने मन की उलझन को महसूस करते हुए अंबिका खुद से बात करने लगी। उसे लगा जैसे वो एक खोखले जादू में फंस गई है। साड़ी को ठीक करते हुए उसने सोच लिया था कि बस अब और नहीं, वो वेदांश की बातों में और नहीं आएगी। वो चुपचाप वहां से निकल गई। नहा धोकर तैयार होने के बाद वो नीचे आ गई, लेकिन वेदांश अभी भी सोया हुआ था। अंबिका ने उसे नहीं जगाया। नवरात्र का 14 दिन था, इसलिए अंबिका और उसकी सास दोनों ने व्रत रखा था। अंबिका ने अपनी सास के साथ पूजा पाठ शुरू किया, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो अपनी सास से बातें कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा नीची थीं। बार बार वो कल रात के बारे में सोच रही थी, जब वेदांश बड़ी बड़ी बातें करता हुआ उसके नज़दीक आ रहा था, खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा वो पहले कभी नहीं करता था। वेदांश की माँ सुनिधि जी ने उसे नोटिस करते हुए पूछा, अंबिका क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही हो?
कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थकान महसूस कर रही हूँ। कल रात नींद नहीं आ रही थी, शायद इसलिए, अंबिका ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में जोश की कमी थी।
सुनिधि जी ने धीरे से उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। भले ही वेदांश ने तुम्हें मजबूर करके तुमसे शादी की हो, लेकिन अभी तुम दोनों के लिए ये शादी नहीं है। तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। बताओ, मुझे क्यों नींद नहीं आ रही थी? कोई बात है क्या? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर वेदांश ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ।
उनकी बातें सुनकर अंबिका की आंखों में एक हल्का सा दुख छलक गया। कोई भी अंबिका की इतनी फिकर नहीं करता था, नहीं उसका हालचाल पूछता था, खासकर उसकी माँ के चले जाने के बाद। अंबिका ने नज़र उठाकर सुनिधि जी की तरफ देखा। उनकी आंखों में उसके लिए एकदम जेन्युइन कंसर्न नज़र आ रहा था। उसे ये पहचानते ही आंसू भरी आंखों के साथ उसने चेहरे पर हल्की मुस्कराहट लाते हुए उनकी तरफ देखा और एक हाथ से अपने बाल पीछे करते हुए बोली,
थैंक यू सो मच मेरी इतनी फिकर करने के लिए आंटी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक है। वो बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी कल रात, और व्रत की वजह से शायद थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है।
सुनिधि जी ने अंबिका की बात सुनकर कहा, ऐसी बात है तो फिर तुम व्रत मत करो, कोई जरूरी नहीं है। वैसे भी माता ये नहीं चाहेंगी कि उनके भक्त तकलीफ में रहकर उनके लिए व्रत करें। तुम आराम करो और दवाइयाँ ले लो, हमने आज की पूजा तो वैसे भी कर ली है।
अंबिका ने धीरे से अपना सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं माँ, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। मैं हमेशा पूरे 9 दिन का व्रत रखती हूँ, और मेरी माँ भी हमेशा मुझसे यही बोलती थीं कि अगर ज़रा सी भी तकलीफ हो तो व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, और मुझे व्रत रखने में अच्छा लगता है, सुकून का एहसास होता है और माता रानी के करीब महसूस होता है।
अंबिका मुस्कुराते हुए सुनिधि जी की तरफ देखने लगी। तब उन्होंने कहा, ऐसी बात है तो फिर मैं भी दोबारा से ये बात बोलकर पाप में भागीदार नहीं बनना चाहती। तुम अगर पूरे मन से व्रत करना चाहती हो तो देवी माँ जरूर तुम्हें हिम्मत देंगी, लेकिन अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझे भी अपनी माँ ही समझो।
अंबिका ने एकदम से सवाल किया, क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? सुनिधि जी ने खुश होते हुए कहा, हाँ बिल्कुल बुला सकती हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे मेरी मिशु वापस आ गई है। लेकिन सिर्फ मुझे बोलने के लिए मत कहना, अपनी सारी तकलीफ प्रॉब्लम भी शेयर करना, बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह, क्योंकि वेदांश का तो तुम जानते ही हो मेरे लिए कैसा है। वो तो मुझे शायद मानता भी नहीं है, हमारा रिश्ता कहीं बहुत पीछे छूट चुका है।
आखिरी बात बोलते हुए उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। उन्हें देखकर अंबिका के चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हो गई, क्योंकि ये बात वो भी इतने दिनों से नोटिस कर रही थी। वेदांश को वो अब तक समझ नहीं पाई थी, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, बस उनके बीच कोई सीधी बात नहीं होती थी, जिसकी वजह से अंबिका उसे ज्यादा जान नहीं पाई थी, इसलिए वो थोड़ा सा सच में पड़ गई थी।
अंबिका ने पूजा खत्म करके अपने कमरे में जाकर आराम करने का फैसला किया। वो अभी भी मन में उठ रहे सवालों से लड़ रही थी। उसकी सास ने आकर उसे फिर से टोकते हुए कहा, अंबिका बेका, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मुझे तुम किसी बात को लेकर परेशान लग रही हो।
नहीं माँ, बस थोड़ी थकान है, और हाँ कुछ सोच रही हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। अंबिका ने धीरे से कहा, तुम्हें वेदांश से बात करनी चाहिए। कभी कभी दिल की बात शेयर करने से मन का बोझ हल्का हो जाता है, सुनिधि जी ने अंबिका को समझाते हुए कहा। अंबिका ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, आप सही कह रही हैं माँ, मैं वेदांश से बात करूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अंबिका ने उनकी बात मानकर दोबारा हल्की सी मुस्कान दिखाई, लेकिन अंबिका का मन अभी भी भटका हुआ था। उसने फिर से खुद से कहा, क्या सच में मैं वेदांश पर बेवजह का गलत शक कर रही हूँ, या सच में कुछ है वेदांश और उस लड़की के बीच? ये सब सोचते सोचते अंबिका ने अपने दिल की गहराइयों में झांकने का फैसला किया। क्या वो सच में वेदांश पर भरोसा कर सकती थी, या ये सब सिर्फ उसके मन का वहम था? आखिरकार एक नतीजे पर पहुंचते हुए उसने अपने आप से कहा, आज मैं वेदांश से अपने दिल की बात जरूर करूंगी, मुझे ये स्पष्ट करना होगा कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। अंबिका ना चाहते हुए भी वापस अपने कमरे में आ गई। जब वो अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि वेदांश जाग चुका था और ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वो अपनी शर्ट के कफ के बटन लगा रहा था, लेकिन अंबिका के दरवाजे से अंदर आते ही वेदांश का ध्यान उसकी तरफ हो गया। वेदांश ने अंबिका के पास जाने और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अंबिका ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जैसे वो उसे सुनना ही नहीं चाहती हो। वेदांश ने एक बार फिर उसे पुकारा, अंबिका, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? लेकिन अंबिका ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कमरे के अंदर जाकर बेड पर एकदम किनारे पर बैठ गई, और उसने अपना चेहरा भी दूसरी तरफ कर लिया। अंबिका के इस तरह से नज़रअंदाज करने पर वेदांश का दिल भारी हो गया। उसने अपने आप से सवाल करते हुए अपने मन में कहा, क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे वो मुझसे इतनी दूर हो गई है? क्या वो अभी भी मुझसे नाराज़ है? अपने मन में ये सब सोचते हुए वेदांश ने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। लगभग 11 बजने वाले थे और वेदांश को ऑफिस के लिए निकलना था। उसने एक आखिरी बार अंबिका की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में वही दूरियां थीं। वेदांश ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे लगा था कि कल रात की बातें हमें और करीब ला देंगी। क्यों ये इतनी नाराज़ है? क्या उसने त्रिशा को मेरे साथ देख लिया था? लेकिन कब, कैसे और कहाँ देखा? हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। यहाँ त्रिशा ने मेरे नज़दीक आने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने एक बार भी उसे परमिशन नहीं दी थी, और मैं उसका साथ भी नहीं दे रहा था। तो फिर क्यों, ये इतनी नाराज़ क्यों है मुझसे? वेदांश के मन में तरह तरह के सवाल घूमने लगे और वो बात करने के लिए अंबिका की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसका मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा कि उसके असिस्टेंट सौरभ का फ़ोन था, जो कि वेदांश को ना चाहते हुए भी रिसीव करना पड़ा। उसने अपने हाथ की कसकर मुट्ठियां बांध ली और वो फ़ोन कॉल रिसीव कर लिया। टू बी कंटिन्यूड। अंबिका क्यों कर रही है वेदांश को इग्नोर, और वो कब तक ऐसा करती रहेगी? क्या फिर दांस को उसके सवालों के जवाब मिलेंगे, और क्या उसे पता चलेगा कि सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि? और बताइए कमेंट सेक्शन में, और कैसा लगा ये आज का एपिसोड और ट्विस्ट।